तुम नहीं ये जानना आवश्यक है। आज तो आज से करीब करीब 520 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी राधा जी के भाव और शांति को लेकर जगत में सती नंदन बहु धन के रूप में थे और वो सारे विश्व में भक्ति रस को देना चाहते। उनका दो उद्देश्य था, पहला जगत के लोग राग मार्ग को समझे, एक वैधि भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति होती है, वैधि भक्ति से अधिक वैकुंठ तक आदमी पहुंच सकता है और रागानुगा भक्ति के ग्रहण करने से वो लोग वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकता है, तो इसीलिए वो आए थे। और रूप गोस्वामी उनके परिकर थे, उनके अंदर में भक्ति रस समुद्र का एक बिंदु उनके हृदय में प्रेरणा दी और उन पर कृपा की प्रयाग में और जगन्नाथपुरी में कविदामोदर रामानंद नित्यानंद प्रभु इत्यादि परिकरों के द्वारा कहा कि आप लोग इसके ऊपर में कृपा कीजिए जिससे कि हमारी मनोभिलाषा को पूर्ण कर सके। चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा क्या थी? पहले चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तब वो दिया गया था, अब तक ये राजमार्ग भक्ति और राधा जी का जो भाव है, रूपमंजरी का जो भाव है सेवा के लिए, जुगल सेवा के लिए वो नहीं दिया गया। इसलिए कृष्ण उसको देने के लिए राधा जी का भाव और उनका अंग कांति ग्रहण करके जगत में आए और रूप गोस्वामी के अंदर में प्रेरणा दी जिससे रूप गोस्वामी कर सके। करुणा करके आए प्रकट हुए सच्चिदानंद गौरहरि के, इसलिए आए समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसान सह भक्ति प्रियम उन्नत उज्ज्वल रस श्रीमती राधिका का है। और उनके भावों की मंजरी के पत्ते और मंजरी है, यदि किसी लता में पत्ते और मंजरी न हो तो उसकी कोई शोभा नहीं उठी और उसकी शोभा पत्तियां विशेष करके मंजरियां है। यही मंजरी भाव रूप मंजरी का जो भाव है वही देने के लिए आए थे और मंजरी के द्वारा उन्होंने यही जगत में प्रचार करवाया। उन्होंने उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि विदग्ध माधव ललित माधव अलंकार कौस्तुभ हंस गुरु इत्यादि कम से कम तो 40-50 पुस्तकें उन्होंने लिखी जो भक्ति का विचार विवेचन किया है उन्होंने रूप गोस्वामी ने। और किसी भी संप्रदाय में चाहे रामानुज हो, मध्वाचार्य हो, विष्णु स्वामी हो, निम्बाद जी के या निम्बाद हो या वल्लभाचार्य का संप्रदाय हो, किसी में इतना उन्नत भक्ति का विचार नहीं दिया गया जो रूप गोस्वामी ने दिया। तो उसके लिए विवेचन किया, भक्ति की परिभाषा लिखी, अन्ना विलासिता पुण्यम ज्ञान कर्म अनाथ अनावृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलन समस्त प्रकार के कामना वासनाओं जो कृष्ण से को छोड़ करके सब प्रकार की कामनाओं को छोड़कर ज्ञान और कर्म से भी उसको आच्छादित न रहे और कृष्ण के लिए प्रीति करने के लिए तन मन वचन और भाव सब प्रकार की चिंताएं कृष्ण और उसमें भी गुरु अनुगत न हो नरम तज्ञमयी हो परिधारावत अविच्छिन्न गति से हो तो उसको उत्तमा भक्ति करते हैं। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने श्रद्धा किसे करते हैं, निष्ठा किसे करते हैं, भाव किसे करते हैं, आसक्ति किसे करते हैं, रुचि किसे करते हैं, कोई जानता नहीं था। इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कृष्ण की सेवा की वासना जो है इच्छा ये श्रद्धा और उसका ऊपरी लक्षण शरणागति है। भाव के लिए लिखा शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुख जन सुसाम्य भाव रुचनी चित्त मात्र दर्शन भाव जब जीव मिश्र सत्व है बद्ध जीव शुद्ध जीव शुद्ध सत्व है और वैकुंठ और कृष्ण के लोक के जो है वो शुद्ध सत्व है और विशुद्ध सत्व राधिका इत्यादि के जो कृष्ण की सेवा की भावना है वो विशुद्ध सत्व है। उसकी भी आत्मा जो राधा जी का अपना भाव है बदाना है उसके अनुगत में भजन करते 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 जब वो भाव आएगा तो उसको चवि दूर हो जाता है और प्रेम रूपी सूर्यता ये अणु बना जिसके अतिरिक्त प्रेम का भी ध्वंस का कारण रहने पर भी ध्वंस न हो जब तभी ध्वंस कारण अभी जब तभी ध्वंस कारण ध्वंस का प्रेम ध्वंस होने का कारण वो होने पर भी वो प्रेम बढ़ जाता है ध्वंसता नहीं तो उसे प्रेम उसी प्रकार से स्नेह मान प्रणय भाव अनुराग भाव महाभाव महाभाव माने क्या कृष्ण के विषय प्रेम कृष्ण है उसकी चरण सीमा है और अधिकारी आसक्त की चरण सीमा है। जब उन दोनों का प्रेम बढ़ते बढ़ते अंतिम स्थिति सीमा तक पहुंच जाता है तो वो केवल आश्रय का संवेद्य होता है स्वसंवेद्य दशा अर्थात तो राधिका ही जानती है और कोई नहीं जानता। राधिका की भूल जाती है कि कृष्ण हमारे प्रियतम है मैं उनकी प्रियतम है ये भी भूल जाती है एकदम दृढ़ीभूत होकर के बस प्रेम ही प्रेम और उस स्थिति में राधिका में ही होता है कोई समझ नहीं सकता किंतु उसमें सात्विक व्यभिचारी अनुभव भाव अनुभव सात्विक व्यभिचारी विशेष करके सात्विक भाव जो है उसमें दीप्त प्रोदीप्त अंतिम अवस्था में प्रकटित होते हैं जो महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में प्रकट होते थे वैसे उनमें प्रकट ये महाभाव मदन भाव का भी लिखा इस तरह से परिभाषा दे करके लिखा जो किसी भी संप्रदाय में उपलब्ध नहीं है इसलिए हम लोग क्या विश्व के सभी लोग उनके लिए ऋणी हैं जो प्रेम को समझना चाहते रूप गोस्वामी की उन्होंने क्यों वृंदावन में आए? वही के तो वृंदावन चैतन्य महाप्रभु जी उनको आदेश दिया, वृंदावन में जाओ, भक्ति के ग्रंथों को लिख करके प्रचार करो और जो विग्रह प्रकाशित नहीं है उनको करो। उन्होंने बद्रनाथ के प्रकटित किए हुए स्थापित किए हुए श्री श्री राधा गोविंद जी का विग्रह अब तक लुप्त था, वृंदावन को कोई नहीं जानता था, केवल बन ही बन था। रूप सनातन ने आकर के वृंदावन को प्रकट किया, ये वृंदावन जमुना नदी है, नहीं तो सामने बन को लोग समझते थे ये वृंदावन है। उन्होंने बताया कि ये वृंदावन है जहाँ पर जमुना जी है, पास में गोवर्धन है, यहीं पर रास हुई थी। इन लोगों ने ये सब प्रकट किया महाप्रभु के आदेश, और भी उन्होंने कार्य किए जो हमारे इतिहासों में बहुत प्रमाण थे। गुरु पूर्णिमा के संबंध में, व्यास जी के संबंध में
श्रीमद कृष्ण दरिपाय वेद व्यास
जिन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले मथुरा के कृष्ण गंगा घाट में ही यमुना के बीच टापू में ही जन्म लिया, यानी उनका आविर्भाव हुआ। जैसो नारायण स्वयं स्वयं भगवान नारायण व्यास जी के रूप में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में स्वयं प्रकटित हुए, समय समय पर संसार में बहुत से व्यास हुए हैं जिन्होंने शास्त्र ग्रंथों को विस्तार किया और विशुद्ध तत्व सिद्धांत को व्यक्त किया है, इसलिए उनको भी व्यास कहा जाता है। परंतु उन सभी व्यासों में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो पराशर नंदन है, इनको व्यासो नारायण और स्वयं स्वयं नारायण कहा गया है। वे श्रीमद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हुए, जबकि संसार में एक समय गौतम ऋषि के अभिशाप के कारण संसार में लोगों में ज्ञान और तत्वदर्शन विचार बुद्धि विवेक समस्त मंत्र ज्ञान सभी गुण भूलते चले गए या विस्मृत हो गए। ऐसे समय में संसार में एक अज्ञान छा गया और विविध प्रकार के मत मतांतरों का आविष्कार होने लगा। ऐसे समय में भगवान ने दया करके जीवों में कुछ ज्ञान का विस्तार करने के लिए व्यास जी के रूप में अवतरित किए और श्रीमद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पराशर ऋषि को निमित्त करके, जबकि वे यमुना पार जा रहे थे पल्ली पार, और जाते समय कितना समय निकलता है 15 मिनट का यमुना पार होने में, उतने समय के अंदर में जब ही उन्होंने सप्तवती की ओर देखा और देखने के साथ ही साथ इच्छा मात्र स्वयं व्यास जी प्रकट हुए और माता पिता को प्रणाम करते हुए माता जी से कहा कि जब कभी कोई आवश्यक हो मुझे स्मरण करने आ जाऊंगा। तो इतना कह करके जीव कल्याण के निमित्त वज्रकाष्ठम को गए और वहां जाकर के उन्होंने सर्वप्रथम वेदों का विवाह किया। ऋग साम यजुर् अथर्व चारों वेद, जिसमें ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग, आरण्य भाग और उपनिषद भाग, ये चार विभाग हुआ है। ब्राह्मण भाग में यज्ञ के विधि विधान नियम कानून ये गद्याकार में प्रशिष्ट वर्णन किया गया है और मंत्र भाग में भगवान की स्तुति प्रार्थना दिखाई है, जिसमें यज्ञों में आहुति दी जाती है मंत्रों के द्वारा, ऐसे मंत्रों का वर्णन हुआ है। इस प्रकार आरण्य भाग में यहाँ पर पूर्व काल में गुरु वर्ग ऋषि लोग अपने छात्रों को शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे और जंगल के अंदर गुरु का आदेश पालन करते हुए शिष्य वर्ग गुरु सेवा का आदर्श दिखाया, उसको आरण्य भाग कहा गया है। कि वैदिक रीति में यह देखा जाता है जब तक शिष्य गुरु की सेवा करते हुए अपना शुद्ध निष्कपट हृदय वाला नहीं बनता, तब तक विद्या को धारण करके वो कुविद्या में परिणत हो जाता है। इसलिए शिष्यों को चाहिए सरल निष्कपट हृदय और निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करना। इसके द्वारा क्या होता है कि उनके हृदय में जो तत्वदर्शन विचार व्यक्त होता है वही जीव कल्याण के लिए होता है, अन्यथा संसार में समाज में आए हुए व्यक्तियों में एक गरीब श्रेणी के आए तो दूसरे और आसुरी श्रेणी वाले आ गए। आसुरी श्रेणी वाले जो कि कभी गुरु का आश्रय नहीं किया, कोई गुरु मिला भी तो अपना जो अहंकार अभिमान राष्ट्रीय तांत्रिक स्वभाव को छोड़ नहीं पाए, इसलिए उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, गुरु सेवा के द्वारा हृदय निर्मल नहीं हुआ और ऐसे अशुद्ध हृदय में ज्ञान की प्राप्ति या साधना करते हुए उन्होंने आधुनिक बल को बढ़ावा दिया और उस आधुनिक बल के कारण समाज के लिए विघातक बन गए। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, रावण कुंभकर्ण हुए, जैसे शुक्राचार्य भी शिव जी की आराधना की, महामृत्युंजय मृत संजीवनी विद्या इत्यादि प्राप्त की, परंतु सभी कुछ असुरों के हित के
लिए हुआ, समाज के विध्वंस के लिए हुआ। इसलिए एक विद्या होती है समाज कल्याण के लिए, एक विद्या समाज के विध्वंस के लिए हो जाती। इसलिए जब तक शिष्य परिपक्व रूप में गुरु की सेवा करते हुए हृदय को निर्मल पवित्र नहीं बनाए, तब तक विद्या उसके अमंगलकारी बन जाता है। जैसे कि एक लोग के जीवन में हुआ, गुरु को अंगूठा दिखा करके यानी मूर्ति बना करके गुरु की पूजा कर ली और उनने शिक्षा ग्रहण किया, शास्त्र विद्या में पारंगत हो गया, गुरु जी ने उसका अंगूठा भी कटवा लिया, फिर भी उसके अंदर से हिंसा वृत्ति शत्रुता विद्वेष भावना नहीं गई। इसलिए महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में पांडवों के विरुद्ध लड़ाई। तो ये सभी बातें देखी जाती है कि गुरु शिष्य की परंपरा। इसलिए श्रीमद कृष्ण दैपायन वेदव्यास ने कहा, वेदों के आरण्यक में गुरु और शिष्य के सेवा का आदर्श दिखाया गया है। जब तक सेवा का आदर्श नहीं रहेगा तब तक आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता है। इस प्रकार आरण्यक किया और उपनिषद भाग जाता है। उपनिषद भाग में हुए हैं ऊपर सभी के नीति उपनिषद। श्रीमद कृष्ण दैपायन वेदव्यास जी ने वेदों की शाखा और प्रशाखा के रूप में उपनिषदों को बुलाया, जो कि हम लोग ने गुरु जी से सुना है। उपनिषदों की टोटल संख्या 1180 है। 1180 में जबकि अब हम लोग देखते हैं 150 तक हमारे पास में उपलब्ध होता है, इससे आगे और मिलता नहीं है। तो जैसे भी हो कि 1180 उपनिषद वेदों की शाखा में हुई, इनको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद विद्या यानी ऊपर समिते निंसद इति इति उपनिषद, जिस विद्या के द्वारा हम भगवान के समीप पहुंच सकते हैं, उनके निकट में हो सकते हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं, उनका हम परिकल्प प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी विद्या को उपनिषद विद्या कही जाती है। इसलिए हमारे जितने भी उपनिषद हैं, सभी उपनिषदों में गोपाल का बने, राम का बने, सिद्ध का बने, ईश्वर के कठोर प्रश्न मंत्रुत्व तैतरीय कैतरीय छांदोत्वारण श्वेता आदि आदि उपनिषद है। और वैसे ये सभी शास्त्रों को प्रणयन किया। कहने के पश्चात जबकि देखा ये सारा जटिल है, साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे इतने हर वर्ष, तो उस समय उन्होंने क्या किया, उसका सार संकलन करते हुए छोटे छोटे कोड और अनुवाद बना लिए, क्योंकि कोड शब्द में उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, जिसको कहा जाता है 550 सूत्रों में वेदांत सूत्र की रचना हुई, जिसमें सभी तत्व एक विशाल विशाल तत्व उसमें सन्निहित है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञास जन्मादस्य जता आदि से लेकर इसके पश्चात देखा जाता है वेद उपनिषदों की कथाओं को प्राचीन शब्दों में संस्कृत भाषा में पुराणों में वर्णन किया। अब पुराण लिखे गए हैं सात्विक राजसिक तामसिक। वैसे ने समस्त प्रकार के प्राणियों को मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, भगवान की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने सात्विक राजसिक तामसिक तीनों प्रकार के पुराण बनाए, जो कि 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 उप पुराण, टोटल 54 पुराण बना दिए। इसके पश्चात उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें यह कहा गया है ग्राम कथानुवाद कृष्ण मतिर गृह्णीया, कि ग्रामीण कथाओं का, संसारी बातों का, राजा महाराजाओं की कथा, कौरव पांडवों की कथा और उनमें उनके आपस का द्वंद, इसके साथ महाभारत की लड़ाई और महाभारत के युद्ध में वहां पर गीता का वर्णन कर दिया, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। इन उपदेश हमारे श्रीमद भगवत गीता के रूप में प्रकटित हो। तो इसलिए इस महाभारत के द्वारा लोगों का ध्यान कृष्ण की ओर जाए, भगवान कृष्ण कैसे दयालु है और कैसे वे परब्रह्म है और उनके रूप गुण लीला माधुरी के प्रति आकर्षित हों, इसलिए महाभारत की रचना हुई। ये सभी शास्त्र होने के बावजूद व्यक्ति के मन में तृप्ति नहीं हुई। हमने जो कुछ किया केवल संसारी लोगों के धर्म अर्थ और विषय सुख का उपभोग जो काम के रूप में और चौथे रूप में मुक्ति, ये चार पुरुषार्थ दिखा। भगवान की कथाओं को भी उसमें शामिल कर दिया कि भगवान की कथा सुनने से धन मिलेगा, रोग व्याधि दूर हो जाएगी, संसार का सुख मिलेगा। यदि भगवान की कथाओं को सुने तो संसार से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह के हेतु बांध करके इन कथाओं को व्यक्त कर दिया। परंतु इस कारण से नारद जी ने व्यक्ति को उपदेश दिया कि यह उपदेश जो आपने वर्णन किया ये जीव कल्याण के लिए नहीं हुआ, केवल भौतिक सुख की प्राप्ति और अधिक से अधिक मुक्ति तक की, जिस मुक्ति को एक हथियार माना जाता है वो भी उसमें शामिल हो गया। इसलिए ये सभी कपटता में परिपूर्ण है। वास्तव सत्य तो ये है कि भगवान की सेवा के द्वारा जैसे आत्मा की शांति मिलती है, ऐसे जब नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि योग साधना के द्वारा और किसी भी उपाय से संभव नहीं है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत का वर्णन करें जिससे जीवों का वास्तविक कल्याण हो, जिसमें परम धर्म की विशेषता दिखाई जाए और भक्ति भक्त भगवान के स्वरूप का वर्णन हो। अभी जैसे गुरु जी ने बताया था श्री रूप गोस्वामी जी के कुछ प्रसंग में, जो कि भक्ति के विशुद्ध भक्ति का वर्णन, जिसमें प्रथम स्टेज जो कि श्रद्धा साधु संघ गुरु पदाश्रय भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव, ये साधन की सभी स्थिति का वर्णन। उसके साथ साथ जो सिद्ध स्थिति में भक्ति का जो यथार्थ स्वरूप है, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव और भी आगे जो भावों की पराकाष्ठा है, ये सभी व्यक्त भगवान के विशुद्ध लीला चरित्र का वर्णन है। और भक्तों के चरित्र, भक्तों ने भगवान की कैसे सेवा की है, इसलिए वेद्यम वास्तव भक्त वस्तु शिवलम, वास्तव वस्तु भक्ति भक्त भगवान की कथाओं का विश्लेषण श्रीमद् भागवत से हुआ है और इसके द्वारा व्यक्ति का हृदय भी परमानंद में परिपूर्ण हुआ। उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को जो जीवन मुक्त पुरुष है, ऐसे श्री सुखदेव जी को भागवत रस का पान कराते हुए विश्वजीव को यह महादान दिया, क्योंकि यह महादान और विश्व संसार में इससे बढ़ करके कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए यद्यपि श्रीमद् कृष्ण नहीं पाया बेलो प्यास के लिए जन्मादर्श से लेकर के 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत को परिपूर्ण रूप दिया, फिर भी श्री सुखदेव जी के प्रसंग में जहाँ वर्णन होता है और श्री शुद्ध गोस्वामी जी गुरु जी की वंदना करते हैं, बड़े गुरु कैसे गुरु हो तो कैसे और कैसे हम गुरु का प्रणाम करें, तो उसमें श्रीमद् भागवत जी ने बड़ा सुंदर एक रूप दिया है जो कि यम प्रवयंत मनुपेत मपेत कृत्यम दैवायनो विरहता तरया जुवः पुत्रेति तन्मयतया तरमाभिनेतु स्वाम सर्वभूत हृदयाम मुनिमानोतस। जबकि श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया, परंतु जन्म लेते ही भगवान की स्तुति प्रार्थना कर ली, प्रदक्षिणा कर ली और मधुर कंठ से जो प्रार्थना की, भगवान कृष्ण ने इससे प्रसन्न होकर के उनको मुकाम बरोदी वातावरण कि ऐसे गुरु हैं जो वृक्षों के अंदर में जो जल का संपन्न वृक्ष कभी बोलता है क्या? यह बाहर में कभी बोल सकता है? वे कभी नहीं बोल सकते हैं। स्टोन और वृक्ष जो है ये वो कभी नहीं बोलते। फिर भी ऐसे गुण के अंदर में चेतनता जगा करके और स्वयं अपनी वाणी को प्रकाशित कर दिया है। ऐसे जो गुरु जी है जो कि जल को चेतन कर दे, मुकम करो दी वाचा, एक मूर्ख भोंगा व्यक्ति को भी वाचा बना दे, एक मूर्ख को भी पंडित बना दे, और भोंगम रंगयते गिरिम जो कि एक लगा व्यक्ति भी एक पर्वत को ला दिया, यानी असंभव को संभव करा दे। ऐसे जो गुरुदेव मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु जी हमारे हृदय में प्रकटित हो, क्यों हम सभी जड़ और इस पांचवर्ती शरीर में हम जड़ता से घिरे हुए हैं। हमारे पानी में जड़ता, सुनने में जड़ता, आंखों में जड़ता और ये शरीर भी जड़ता से परिपूर्ण है। ऐसे इस जड़ शरीर में हमारे पास क्या है जो हम किस वस्तु से हम गुरु की और भगवान की सेवा करें? परंतु ऐसे गुरुदेव जो कृपा करके हमारे हृदय में बैठे हैं, ये वे अपने तत्व वस्तु को हृदय से ही प्रकाश करें, वे अपने वाणी के रूप में इस कंठ से ही व्यक्त हो, ऐसे गुरु जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार गुरु जी जो है वे नित्य चिन्मय वस्तु भगवान श्री हरि के निज जन है, वे उनके परितर हैं, उनमें कितनी शक्ति है और इस शक्ति के कारण सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। और भी जैसे गीता के एक श्लोक में दिखाया, जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु हमारे बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, उस समय जबकि अर्जुन ने ये कहा, जब अर्जुन ने ये कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, तो भी भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया कि आप मुझसे कुछ सुनाए, कुछ बताए, मैं आपका शिष्य बन गया तो आप बताइए, तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब अर्जुन ने कहा अच्छा प्रभु आप मुझे मुझ पर शासन करें, डंडा मार मारे शासन करें, चाहे आप जो चाहे कर ले, तो भी भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब अर्जुन ने यह कहा तो आप प्रबन्न कि मैं आपके चरणों में संपूर्ण रूप से और शरणागत हो गया हूँ, और मेरी अपनी विद्या बुद्धि अपना कर्तव्य हम कुछ नहीं करते, सब कुछ आपके चरणों में नोछावर किया, अपना अपनत्व हमने मिटा दिया और आप जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगे। ऐसे जब शरणागति हुई तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। तो इसलिए गुरुवर्ग की यह शिक्षा है, जब तक हम गुरु के चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं करें, शरणागत नहीं हो, अपने अहमिका लेकर के हम बैठे रहे, तब तक हम उपयुक्त शिष्य होने लायक नहीं, तब हम हो सकते हैं जब हमने संपूर्ण मान प्राण वचन जीवन सब कुछ हमने गुरु के चरणों में समर्पण किया, उनके आदेश निर्देश पर हम चलते हुए उनकी सेवा में हम नियुक्त हैं, तब यथार्थ शिष्य कहलाएगा। नहीं तो अपना अहंकार अभिमान लेकर के कहीं भी भक्ति नहीं होती है। जैसे भरत मिलन में रामचंद्र और श्री भरत जी के कथन में हम लोग हमेशा सुना करते हैं, इसलिए मैं इन्हीं कथाओं के साथ आज मैं अपना वक्तव्य
संक्षेप में रसानंद ब्रह्मचारी जी थोड़ा सा सनातन गोस्वामी के संबंध में थोड़ा सा तब मैं बोलूँ 10 मिनट।
Om Hari Ananda Jaya Namaste जगत में बड़े बड़े गुरु होते हैं, लेकिन वास्तव रूप में गुरु का संपूर्ण गुरुत्व कहां पर स्थित है? अगर गुरु पाद पद्म को जो बताया गया तब तथामृतं तत् जीवनं तद् विरीतं कर्म सापं, इसमें जो बताया गया भूरी का जना तो जगत में सबसे बड़ा दानी है, तो जगत में बड़े बड़े दानी है, लेकिन सबसे बड़ा दानी कौन है? यदि सबसे बड़ा दानी जो गुरु पाद पद्म चैतन्य महाप्रभु उसी जगत में जो अनर्पित चरित्रात प्रेम को देने के लिए आए थे और उसी प्रेम में ब्रज प्रेम, अब ब्रज प्रेम में भी उसमें जो पारकीय भाव, उसमें जो मंजरी भाव है, तब वो चीज वो जो इसी जगत में प्रदान करते हैं, तब ये जगत में सबसे बड़ा दान है। इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्य वाले हैं, हम इधर उधर किसी संप्रदाय में नहीं जा करके श्री महाप्रभु के धारा में आए और उसी में आ करके ऐसे एक गुरु जी को पास में आए हैं जो गुरुदेव उन्नत उज्जवल रस की जो श्री की सौंदर्य वो मन को देने वाले गुरु जी। इसलिए समझो हम लोगों का जीवन है बड़े धन्य धन्य वाला जीवन है। क्या ये गुरु जी का वास्तव काम है? ये काम को जो गुरुपाद पद्म कहते हैं, अगर हम गुरु जी को पास में आ करके यह भाव को अगर हम अपना जीवन में अपना सके तो समझो सचमुच से हमारे गुरु पूर्णिमा सार्थक हो गया। कहते प्रभुपाद जी की वाणी, इसलिए एक विभजन करो और आचरण करके उसको प्रचार करो। कहते जो व्यास पूजा, कहते व्यास पूजा सर्वप्रथम किसने प्रकट किया है? कहते व्यास पूजा को सर्वप्रथम ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है, जितने पहले से था। इसलिए इतने चैतन्य महाप्रभु ने बता रहे हैं श्रीवास पंडित और नित्यानंद प्रभु सब कैसे भक्त लोग थे। कहते कल व्यास पूर्णिमा है, इसलिए कल हम लोग व्यास पूजा करेंगे। बोले श्रीवास पंडित, लगता है तेरे पर बड़ा बोझ आ गया। बोले बोझ नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु आपकी आशीर्वाद से सब कुछ हमारा घर में उपस्थित है, थोड़ी सी इधर उधर वस्तु ले आएंगे, कल हम व्यास पूजा दर्शन करेंगे। अभी श्रीवास पंडित घर में ये व्यास पूजा के अनुष्ठान की है, अभी समय निकलते हुए जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अवधूत नित्यानंद ये व्यास पूजा करो जल्दी जल्दी। नित्यानंद प्रभु सिर हिला रहे हैं, जल्दी करो ना। इतने में वो इतने सारे सामग्री था सब के सब लेकर के उन्होंने माला चंदन लेकर चैतन्य महाप्रभु को गलान उन्होंने पहना दिया। जब पहना दिया इतने सारे भक्त लोग थे बड़े प्रसन्न हो गए। कहते यहाँ पर तात्पर्य है, कहते जो मूल व्यास कौन है? कहते श्रीमद नित्यानंद प्रभु, सारे अखंड गुरु तत्व का मूल नित्यानंद प्रभु। लेकिन यहाँ पर व्यास पूजा हो रही थी, यहाँ तो पूजा होनी चाहिए थी नित्यानंद प्रभु के, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सब कुछ लेकर तो महाप्रभु गलान डाल दिए, उनको क्यों पूजा किया? कहते कारण क्या है? कहते कारण है, कहते वास्तव जो गुरु है जगत में ऐसे कुछ गुरु हो गए, जय गुरुदेव भगवान भगवान ऐसे कुछ संप्रदाय निकला है तो जय गुरु, गुरुदेव ही सब कुछ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव उनको ही सब कुछ है, भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं। और गुरुदेव भी अपना मंत्र देते हैं पर ठाकुर को सेवा पूजा में कोई मतलब नहीं, तुम्हारे सब कुछ गुरु है। कहते नहीं, कहते बहुत गंदी बात है। इसलिए गुरु जी का जो असली जो काम है क्या है? हमारे विश्वनाथ प्रभु ने बताया, हाँ शिविर आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्त से भक्तान से निजुजतो भी बंदे गुरु श्री चरणारविंद। फिर गुरुपाद पद्म का जो कर्तव्य है स्वयं जो भजन करे और उनको अनुगत जन को भगवत भजन में जो लगाए, कर ये गुरु जी का काम है। वो मतलब अंधकार, रूप मतलब होता है जीव को आलोक, जो भगवान का चरण में जीव को ये पहुंचा दे। लेकिन जगत में ये नहीं करके सब गुरुदेव सबके सब अपना पूजा के लिए जो तड़पा दे। इसलिए व्यास पूजा का तात्पर्य है श्री गुरुपाद पद्म। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने सप्त पंचकम विभिन्न ग्रंथों से उन्होंने सप्त पंचकम उन्होंने लिया है। कहते गुरु पंचकम, एक व्यास पंचकम, एक सनक पंचकम, एक पंचतत्व और ऐसे करके उन्होंने सप्त पंचकम उन्होंने विभिन्न ग्रंथों से उन्होंने लिया है। लेकिन उसने सारे गुरु परंपरा पांच पांच गुरु परंपरा को दिखाया। कहते क्योंकि अभी तक हमें ये जो भक्ति प्राप्त हो रही है कहां से आ रही है? ये गुरु परंपरा माध्यम से ही अभी तक ये भक्ति धारा को हमने प्राप्त किया, इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने दसमूल बनाए, उसमें जो पहला है ये आमना है, उनमें जो पहला तत्व तो आमना है, ये गुरु परंपरा रखा है। और इसी विषय पर हमारे श्री रामानुज आचार्य, उनका एक शब्द बहुत अच्छा शब्द है, वो कहते हैं तो उसने बताए एक जो आचार्य अभिमान, उसमें एक शब्द मेरे याद नहीं आ रहे ठीक से, उनका एक शब्द है, उन्होंने ये बता रहे हैं अगर हम किसी सदगुरु परंपरा में, कोई शुद्ध गुरु परंपरा में अगर हम जुड़ जाए, केवल इतना अभिमान आ जाए हम इसी परंपरा के, केवल इतना मात्र से ही जीव का कृतज्ञ हो जाता है, भले हम भजन नहीं कर पाए, भले हम शरणागति नहीं, अगर केवल इतना अभिमान आ जाए किसका परंपरा में, हम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु परंपरा में, माधवेंद्रपुरी, उसके बाद ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, और उसी में हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, और उसी में हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, और उसी में हमारे परिप्राणी आचार्य त्रिपुर स्वामी श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, अगर जिसको अगर इतना ही अभिमान आ जाए हम इनके परंपरा में और इनका आश्रित है, तो रामानुज आचार्य कहते हैं संप्रदाय किसी एक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय की अनुवर्त से हम भजन करनी चाहिए, ऐसे ही भजन करनी चाहिए जहाँ का मंत्र ले लिया तब उसको निष्फल होता, तब मंत्र कोई फल नहीं देगा, इसलिए हमें कोई शुद्ध एक गुरु परंपरा में ही जुड़ करके हमें ये भगवत भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें भगवत भक्ति प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अभी जो हमारे जो व्यास पूजा आ रही है, इसलिए व्यास पूजा का तात्पर्य है हम लोग शुद्ध रूप में श्री गुरुदेव का जो मनोभीष्ट को अगर हम स्थापन कर पाए तो समझनी चाहिए वास्तव रूप में हमें श्री हम श्री गुरुपाद भस्म की हमने सही सही पूजा की है। कहते श्री सनातन बोलते समाप्त करो, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्य वाले हैं जो कि हम इधर उधर नहीं जा करके हाँ एक रसिक परंपरा में हाँ जिस प्रेम को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जिस प्रेम को देने के लिए आते हैं हाँ उसी परंपरा में हम जुड़े हुए, इसलिए हम लोग परम हम लोग सौभाग्यवान है। इसलिए गुरु जी को समझने के श्लोक बताया, उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे पानी है, पानी को अंदर में एक कमल का फूल खिला हुआ रहता है, हाँ कहते वो खिलता है कैसे, कहते इस सूर्य का किरण से कमल फूल खिलता है, कहते सूर्य और किरण से तो कोई चीज झुलस रहता है, जो खिलता है कैसे, अब पानी में कुछ चीज को दे दो छोड़ दो वो तो उसको सड़ा गला देगा, लेकिन वो पानी के अंदर जब ये कमल फूल खिला हुआ रहता है और सूर्य का किरण से खिल जाती है, अगर थोड़ी सी पानी से उसको हटा करके बाहर रख दो, कहते जो सूर्य का किरण से वो कमल फूल खिल जाती थी, वही सूर्य का किरण है उसको जला देती है, हाँ उसको जला देती है, लेकिन वो पानी के अंदर में खिला क्यों रहता है, कहते कारण है कहते कमल जो नार है वो मिट्टी में जुड़ा हुआ वो पानी के अंदर है, कहते उसी तरह अगर कोई जीव अगर श्री गुरुपाद पद्म को आश्रय लेकर के अगर भगवत भजन करे तो हम भले ही ये संसार की हाँ कारागार में हम क्यों नहीं रहे, लेकिन अगर गुरु के चरण में हम जुड़े हुए रहेंगे तो ये संसार में जो दावानल है रहे हुए भी हम इसके अंदर में खिले हुए रहेंगे, ये जो पानी सड़ा देता है वो पानी में भी खिले हुए रहेंगे, जो सूर्य का किरण उसको जला देती है उसमें भी खिले हुए रहेंगे, ये पुराने को श्लोक श्लोक याद नहीं आता, इसलिए श्री शुद्ध गुरु की आश्रय की विशेष जरूरत है, जब तक हम इस शुद्ध गुरु के चरण को हम आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं समझो हमारे सबके सब भजन भजन सबको बेकार है, और ये संसार की दावा मिलते हैं हम जब 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 भूल करके खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम लोग परम सौभाग्य एक रसिक परंपरा में हम लोग जुड़े हुए और श्रील महाराज जैसे संतों का हमें सान्निध्य है, जिसको प्रेम प्रेम में लोभ है, संतों की बहुत बहुत अनुभवी विशेष सौभाग्य हम यही जोर के प्रार्थना करते हो कोई सवाल
चंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय पदभक्ताय नारायण नमस्कृत्य वरं चैव नरोत्तम
देवेन
सरस्वती प्यासं ततो ज्ञायन्ति अभी पूर्णिमा के दिन में नारायण के अवतार व्यास जी का जन्म हुआ और व्यास जी का जन्म कैसे हुआ चंद्रा कैसे हुआ ये सब का विस्तार रूप में श्री तीर्थ महाराज जी ने बतलाया और भी उन्होंने सब बातें जो व्यास के संबंध में जानना चाहिए बतलाया। कुछ बातें हमारे रसानंद ब्रह्मचारी ने बतलाया ये व्यास पूजा का तात्पर्य क्या है, केवल गुरु के चरणों में कुछ फल फूल ले लिया और कुछ रुपया दे दिया, कुछ मिठाई लेकर के दे दिया, गले में माला दे दी, ये नहीं व्यास पूजा है। सब प्रकार से गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर गुरु क्या चाहते हैं उसको पूर्ण करना ये व्यास पूजा है। अपनी स्वतंत्रता को उनके चरणों में संपूर्ण रूप से दे दे, आज से मैं अपना सर्वस्व जो कुछ है सब आपके चरणों में दे दिया, एक देह आने तुम्हारे कृष्ण पाद पद्म
अमृत रस हमारे स्वभाव तुम्हें यही चाहिए,
मैंने अपना सर्वस्व कुछ हे सतगुरु पाद जी गुरु जी आपके चरणों में दे दिया, जो कुछ आप करेंगे उसका पालन करें। इतना आत्मसमर्पण हो जाए तो पुष्प लेकर के करे न करे कोई जरूरत, पुष्प से उनकी पूजा करना ये तो एक प्रतीक मात्र है, साधारण लोगों को शिक्षा देने के लिए, किंतु जब तक यह भाव नहीं होगा कि मैंने सब कुछ अपना गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया, जैसे कि अभी उनको बतलाया सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हर बार की तो बात क्या, राज प्रधानमंत्रित्व का पद एक पैसा भी नहीं साथ में लिया, उनके नौकर ने लिया उसको भी विदा कर दिया और खाली हाँ महापुरुष के चरण में पहुंच गया और संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण और मैं आपका हो गया, ये व्यास जगत में हमारा परमाराध्य क्या है, राधा कृष्ण जुगल की सेवा, इसी के लिए सब आप लोग आए हैं, किंतु ये महादुर्लभ है, किंतु ये महादुर्लभ होने पर सुलभ है जब ये सदगुरु मिल जाए और उसके चरणों में हम आत्मसमर्पण कर दें और उनकी सेवा में शिक्षित हो आचरण करें, बहुत जल्दी से कृष्ण सेवा में पहुंच सकते। इसलिए भक्ति कानून यद्यपि कृष्ण है किंतु उन्हीं का अवतार प्रकाश ये गुरु जी है, गुरु जी की जब तक सेवा नहीं होगी तब लाख सिर पटक करके रह जाओ, किसी भी स्थिति में भक्ति नहीं होगी, भगवान कृपा करने पर भी नहीं होगी, गुरु को भगवान ही समझो, जस देवे
पराभक्ति यथा देरे तथा गुरौ तस्य इत्ते कथिता हि अर्थात् प्रकाशन ते धाति। व्यास जी का आज जन्मतिथि है, इसलिए भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा उपस्थित है। जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने पहले वेदांत सूत्र को वेदों का भी बात किया, वेदांत सूत्र उसका सार संकलन, पुराणों की रचना, महाभारत की रचना की, तो भी प्रसन्न नहीं। तो नारद जी की कृपा से तब उन्होंने भागवत का वर्णन किया और उसको सुखदेव गोस्वामी को कहा। सुखदेव गोस्वामी जी जो अपने गुरु जी की पिताजी की जो पूजा की वो पहली व्यास पूजा, और सुख गोस्वामी ने अपने गुरु को जो पूजा की वंदना की वो दूसरी है। वहीं से व्यास पूजा आरंभ हुई, महाप्रभु से ही नहीं आरंभ हुआ, अनादि काल से ये गुरु सेवा है, कृष्ण सेवा से पहले ही से गुरु सेवा, उन्हीं की परंपरा में धीरे धीरे अभी तक श्री प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद इत्यादि गोस्वामी सब हम लोग उसी संप्रदाय में हैं। उन्होंने बतलाया रसिकानंद जी, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस परंपरा में आए हैं, जिस परंपरा में चैतन्य महाप्रभु है, स्वरूप दामोदर राय रामानंद है, श्रील रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी इत्यादि, कृष्ण दास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद और हमारे गुरुदेव इत्यादि, हम लोगों का परम सौभाग्य। इस परंपरा के अतिरिक्त किसी भी परंपरा में राधा कृष्ण की विशेष करके राधा जी का सेवा की कोई परंपरा ही नहीं है। इसको देने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आए और स्वयं यही प्रचार करके रूप गोस्वामी के हृदय में दे करके और किसी भी संप्रदाय में ये सब चीजें नहीं है। रूपमंजरी का भाव नहीं, राधा जी के अनुबंध में युवक की सेवा, किसी को देने के लिए भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु, और उसी परंपरा में हम लोग हैं। का महा महासौभाग्य, आप लोगों का भी महा महासौभाग्य, किंतु रूप गोस्वामी के विचारों को ग्रहण करना। बहुत से लोग हमारे ब्रह्मचारी इत्यादि आते हैं, सन्यासी नहीं है, किंतु माया का जो रूप है, महिलाओं का रूप, उसमें आसक्त होकर के उसमें डूब जाते हैं और नरक में जाते हैं। उनको सावधान रहना चाहिए, मठ हमारा इसके लिए आप पारा नहीं है, हमारा मठ किस लिए है, शुद्ध रूप में रूप गोस्वामी का धारा का पालन कराने के लिए है। यदि कोई किसी प्रकार से भजन करे तो मठ में रहे और नहीं तो मठ छोड़ करके चला जाए, उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे गंदों को लोगों के लिए हमारे आश्रम में कोई जगह नहीं, केवल मात्र महाप्रभु रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को पालन करने के लिए, उसको सीख करके वैसा ही भजन करने के लिए है, तब ये व्यास पूजा होगी और यही रूप गोस्वामी की पूजा और हमारी गुरु परंपरा इत्यादि की सब इसी में। इस तरह से आप लोग भी सावधान रहिए, मठ मंदिर में ये विवाह शादी का महोत्सव नहीं है, बारात नहीं है, इसको अच्छी तरह से यदि शुद्ध रूप में भजन करना है तो गुरु जी का थप्पड़ खा करके मठ में रह करके उनकी बात को समझो करो। जैसे नारद जी का अभिशाप नर गुवा के लिए परम मंगल हुआ, गुरु वर्गों का चपेटा घात भी मंगलदायक होता है। इसको सच करके यदि कोई रहे तो इनको समझ। आज सनातन गोस्वामी का भी आज नहीं पूर्णिमा के तीनों भाव उत्सव वेदी हमारे एक तरह से व्यासा बता रहे हैं श्रीमद् भागवत की टीका की और बृहद भगवत आनंद जैसा ग्रंथ रत्न प्रकाशित किया। जरूर गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ग्रंथों का मूल
उसी के भित्ति करके सब गोस्वामी ग्रंथ हैं।
उसी को इसलिए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भी गुरु हैं। और दूसरी तरफ से सनातन गोस्वामी ने रूप को ही अपना गुरु मान दिया। ये गुरु है, मैं गुरु हो गया ये अभिमान है तो गुरु कदापि नहीं। गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाता, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत कर गुरु क्या करता है,
गुरु बनाते
सबको गुरु बना देता, गुरु बनने की चेष्टा करता। अपने गुरु परंपरा का विचार और फिर दूसरों को आचार और प्रचार दोनों। इसके लिए गृहस्थ लोग जितना समय गृहस्थी में लगाते हैं उसे 1000 दिन ब्रह्मचारी सन्यासियों को परिश्रम करना है, दिन रात एक सेकंड भी इधर उधर नहीं, सब समय कृष्ण सेवा में। विशेष करके हम लोग इस संप्रदाय में रूप गोस्वामी का प्यार देन है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए जगत में आए इसको समझो। इसको संक्षेप में कहने पर यही कहना पड़ेगा श्रीमती राधिका जी का अनुकरण होना वो भी रूप गोस्वामी के अंतर्गत उनके अनुगत होकर रूप गोस्वामी की चरण भूमि होना ही हमारे जीवन का हमारे गुरु गोस्वामी जितने हैं वो सब यही चाहते। आप लोग के हृदय में भी यह बात आए, आपका जीवन सफल हो। जिस काम के लिए घर बार छोड़ा है या घर बार में रहते हुए यहाँ आते हैं, इन सब उपदेशों को लेकर के व्यास जी की पूजा कीजिए। मूल व्यास कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको प्रसन्न कीजिए, उनके अंदर गोस्वामी और गुरु पाठ करते हैं। आज यही तक रहे, कल सवेरे से हम लोग 7 बजे से 8 बजे से व्यास पूजा आरम्भ करेंगे और परसों जाएंगे वृंदावन में आनंद भवन में, वहाँ पर
कल 7:30 से नहीं तो
7:30 और परसों गोवर्धन में और उसके बाद में दिल्ली में। गौर प्रमाण हमले गुरुदेव कृपा करके कौन सा